रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ। राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ। के जंजाल मुझको घेरे घेरे, मुझको उनके अंधेरे। दुनिया के जंजाल मुझको घेरे घेरे, मुझको उनके अंधेरे। तुम हो भगवान मेरे, तुम हो भगवान मेरे, आओ मेरे साथ चलो, आओ मेरे। राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ। कठिन है डगर ये मेरे प्रभु जी, लंबा सफर है मेरे गुरु जी। कठिन है डगर ये मेरे प्रभु जी, लंबा सफर है मेरे गुरु जी। तुम हो भगवान मेरे, तुम हो भगवान मेरे, आओ मुझको पार लगाओ, आओ मुझको पार लगाओ, राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ। ये साज उठाया तुम्हारे लिए ही, ये काज उठाया तुम्हारे लिए ही, ये साज उठाया तुम्हारे लिए ही, ये काज उठाया। तुम हो भगवान मेरे, तुम हो भगवान मेरे, आओ इसमें हाथ बटाओ, आओ इसमें हाथ बटाओ, राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, राह दिखाओ गुरुवर मेरे, अपनी वाणी मुझको सुनाओ, अपनी वाणी मुझको सुनाओ।
साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।
आज के युवा विकास कार्यक्रम में हर बार की तरह मैं और मेरे वरिष्ठ श्री कृष्णकांत दुबे आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी संभवतः एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दुबे जी अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा और अक्सर पढ़ने में आता ही रहता है कि हमारे इंदौर शहर में भी एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो पुस्तक मेला अपने आप में बेहद ज्ञानवर्धक होता है।
सही कहा आपने।
और युवाओं के लिए सबसे पहली जरूरी बात है उनका शिक्षण, पढ़ाई लिखाई। अब शहरों महानगरों में तो यहाँ के जो युवा हैं युवतियां हैं ये तो किसी तरह इनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वहां के भी युवा युवतियों को पढ़ाई पूरी करना बहुत जरूरी है, अपना कोर्स, अपना स्कूल और अपना जो भी पाठ्यक्रम है सबसे पहले उसमें ध्यान देना चाहिए। भले ही परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, हालात ऐसे हो सकते हैं कि भाई नहीं पढ़ सकते हैं कुछ भी, कुछ और अपना पुश्तैनी जो काम है वो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इन्हें हमारे श्रोताओं को बताइए कि युवाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है ये कितने सहायक हो सकते हैं, खास करके हमारे इस वर्ग को।
जी तो देखिए ओझा जी, जब शिक्षण की बात आती है तो हम इसे दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वे शिक्षण संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, उनका अपना एक स्तर होता है, वहां जो विद्यार्थी जो छात्र पढ़ते हैं वह समझिए कि उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं ज्ञान प्राप्त करने की
जी।
लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी इस चीज की कमी है कि वे सामान्य रूप से अपने पाठ्यक्रम जरूर पढ़ लेते हैं बच्चे और युवा, लेकिन जो सही ज्ञान होता है कभी कभी जो पुस्तकों में होता है वो उनको कम मिलता है। इसके सबसे बड़े कारण ये हैं कि वहां इस तरह के साधन नहीं होते। यहां शहरों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती हैं, पुस्तकों की दुकान भी होती हैं जहां जाकर के युवा अपने विषय का और यहां तक कि मनोरंजन के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।
हर विषय से, हर विषय से पुस्तकों का शहरों में तो कम से कम मिलना आसान है।
बिल्कुल लेकिन आप जानते हैं उदय जी कि जो शहरों में सुविधा है वो गांव में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वे ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते ग्राम के युवा या ग्राम के बच्चे, उनमें भी बड़ी आकांक्षा होती है, वे चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति की जितनी दिशाएं हैं वो प्राप्त हों। वे शहर आते हैं क्योंकि अब तो आप तो जानते हैं कि परिवहन के और आवागमन के साधन जो हैं काफी बढ़ चुके हैं। जब वे शहर में आते हैं तो शायद वे अपनी इस आकांक्षा की थोड़ी बहुत पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सर्वसुलभ ये बात नहीं है। जिनकी क्षमता है वे तो आ जाते हैं, लेकिन जिनकी क्षमता नहीं है जो युवक दूसरे काम करते हैं वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांव में, जैसा आपने कहा, कि ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक जागृति लाई जाए, एक विकास लाया जाए, तभी जाकर के ये समस्या हल हो सकती है।
और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है इसके पीछे भी एक उद्देश्य तो ये भी रहता है।
जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
कम से कम पाठक वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे कुछ अपने विषय से मेल खाता हुआ साहित्य या पुस्तक पढ़ने को मिले। तो दुबे जी, ये अपन ग्रामीण अंचलों की बात कर रहे हैं, तो आपने जैसा भी कहा कि अब तो आने जाने के साधन, और आप अब हम सब ये देख भी रहे हैं कि अधिकतर गांव सिमटते चले आ रहे हैं शहरों की ओर, शहरों में समाहित होते जा रहे हैं।
जी हाँ।
तो अब जो गांव में हैं, जो दूर अंचल में हैं या कहीं भी गांव में हैं, और अगर उनको ऐसी जानकारी होती है कि भाई शहर में पुस्तक मेला लगा है
जी,
तो मेरी राय है कि उन्हें भाई कोई अच्छी फिल्म लगती है तो सात आठ लड़के लड़कियां मिलकर के, भले ही गांव में ही रहते हो, वो फिल्म देखने के लिए शहर में आ जाते हैं।
बिल्कुल।
तो पुस्तक मेला अगर लगता है तो उसमें भी आना चाहिए।
ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है तो उन्हें ये जरूर होना चाहिए कि वे जब पुस्तक मेला लगे, चाहे वो शहर में हो या कस्बे में हो, वहां उनको जरूर जाना चाहिए और अपनी रुचि की पुस्तकें या अपने विषय की पुस्तकें जरूर खरीदना चाहिए। खरीदना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी,
क्योंकि जो खरीदी गई चीज है वो आपके पास संग्रहित रहती है, मांग कर लाई गई कोई चीज कभी भी स्थायी नहीं होती, वो कभी भी मांगी जा सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पुस्तकें मांगी ना जाए, उसे खरीदा जाए और पढ़ा जाए। मैं एक इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं, खासकर गांवों की बात है ये। हमारे यहां पर सरस्वती को ज्ञानदात्री माना गया है, और आपने देखा होगा जब उनकी आराधना की जाती है तो पुस्तक धारिणी शब्द कहा जाता है।
क्या बात
है, जब पुस्तक धारिणी शब्द कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान का सारा स्रोत जो है वो पुस्तकों में है। वहीं से हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, वहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और वो ज्ञान हमें कई दिशाएं देता है। आज मैं कह सकता हूं आपसे कि हमारे देश के युवा बाहर देशों में जाकर के जो नाम कमा रहे हैं उसके पीछे उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी औत्सुक, ज्ञान के प्रति औत्सुकता, ये सब जो चीजें हैं ये हमें बराबर इस बात का इंगित करती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये आज दुनिया के नखरे में या दुनिया के इतिहास में या इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। तो ये इसलिए किया है कि वो, और आपने अक्सर देखा होगा, कई बार आपने भी पढ़ा होगा कि गांव के बच्चे जो हैं वे इन चीजों में अग्रणी होते हैं। तो वो इसीलिए है कि जिनमें ऐसी लगन होती है वो चाहते हैं कि वो जो ज्ञान के स्रोत हैं, पुस्तकें हैं, हम उनको खरीदें, उनको पढ़ें, उनमें अध्ययन करें। अगर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो हम अपने गुरुओं से उसकी ज्ञान की प्राप्ति करें।
और फिर एक तरह की जिज्ञासा भी रहती है जी की। अक्सर कई चीजें ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण इलाकों में पता ही नहीं रहती
जी।
तो मतलब ये कि कहने का, और शायद आपकी बातों से मैं तो खैर सहमत हूं ही, हमारे युवा साथी भी सहमत होंगे कि भाई अगर आसपास आपके शहर में कहीं पुस्तक मेले का आयोजन हो तो उसमें जरूर जाइए। थोड़ा सा भाई और कुछ नहीं तो एक डिक्शनरी खरीद लीजिए
ताकि आपके शब्द
एक शब्दकोश ही खरीद लिया, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी के तो है ही है।
बिल्कुल।
तो वही शब्दकोश ही खरीदने, क्योंकि दुबे जी मेरा ये अनुभव रहा है कि कईयों के पास डिक्शनरी रहती नहीं है,
और इसीलिए उनका शब्द भंडार जो होता है ओझा जी आपने देखा होगा कि बहुत सीमित होता है। और जिनके शब्द भंडार विस्तार होता है, जिनके पास अपने शब्द होते हैं, जिनके पास अपनी अभिव्यक्ति की एक तरीके से सही दिशा होती है, तो आगे चल करके वो लेखक भी बन जाते हैं, आगे चल करके वो एक अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। तो कई सारे लाभ हैं इन चीजों के जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो ओझा जी इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि जो जैसे शब्दकोश के बारे में आपने कहा ये बहुत जरूरी है, तो शब्द भंडार का जो महत्व है आप इसके बारे में कुछ युवाओं से कहेंगे?
बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूं दुबे जी कि शब्द अपने आप में एक ऐसा अस्त्र है
जी हाँ,
जो बड़े से बड़े संकट और दुविधा के क्षणों में
जी हाँ
आपकी सहायता कर सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई जगह ऐसा होता है कि जब अगर आपके पास शब्द हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो अपने को अभिव्यक्त कर देता है या अभिव्यक्ति की उसके में क्षमता होती है वो व्यक्ति कभी भी कहीं हारता नहीं है।
जी, जी, जी। बिल्कुल सही।
हर जगह जब वो खड़ा होता है तो उसके शब्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और समझते हैं कि विद्वान आदमी है। तो ये
और इसके लिए जरूरी है, देखिए शब्दों का भंडार सागर के समान है, जैसे स्वर है वैसे शब्द हैं।
बिल्कुल
है ना,
और इसीलिए आप जानते हैं कि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है।
हाँ, तो
ब्रह्म का मतलब केवल भगवान नहीं है,
उसका ज्ञान तो आप मतलब आपको जितना मिल जाए कम ही मानना चाहिए, लेकिन अगर जिसके पास है शब्द है तो कम से कम वो अपनी बात को अच्छी तरह से लोगों के। और आज देखिए आज क्या स्थिति है कि रोजगार और नौकरियों के मामले में युवा साथियों को शब्द से बहुत समृद्ध होना चाहिए, बोलने में उनको बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि स्मार्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए। और वो तेजी जरूर तभी आएगी जब आप अपने आसपास के माहौल को भी समझेंगे और पढ़ते लिखते भी रहेंगे।
और
भले आप रोज अखबार पढ़ें, भाई पूरा अखबार भी अगर आप पढ़ें तो कई चीजें आपको बाहर विदेशों की भी जानने को मिलती हैं।
और इसीलिए जब आपने कहा कि पुस्तक मेलों का महत्व बहुत अधिक है, इसमें दो मत हो ही नहीं सकते ओझा जी। और युवकों को इस दिशा में सोचना चाहिए और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि गांव में भी कभी पुस्तक मेले लगें। अगर ग्रामीण युवा जो हैं उनको इन चीजों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से
बिल्कुल लगना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। खाली शहरों में ही नहीं लगाएं, वो कस्बों में भी लगाएं
जी,
आसपास ताकि आसपास के गांव के लोग
जी
या वहां के वो सब
युवा हैं।
हाँ। तो जुबी जी, अब इसी संदर्भ में मैं पुस्तकों की अब बात निकली है
जी,
तो मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी किस रूप में सहायक होती है।
अब देखिए, अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन गांव में बीता है। तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गांव में जब पंचायतों का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूं कि उस जमाने में जो पंचायतों का स्वरूप था उसमें एक बात महत्वपूर्ण थी कि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, ताकि गांव के जो युवा हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिले पुस्तकों के द्वारा। और यह भी देखा है मैंने कहा कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे अच्छी सर्वोत्तम पुस्तकें जो अनुदित थी हिंदी में वो गांव में आपको उपलब्ध हो जाती थी। ये
हाँ, मतलब आप
ये नेहरू की बात कह रहा हूँ।
अगर आपको प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ने को मिले या अच्छी कविताएं पढ़ने को मिले, अच्छे निबंध पढ़ने को मिले,
क्या बात,
तो उससे ज्ञान बढ़ता ही है। तो आज 21वीं सदी की बात करें तो आज लाइब्रेरी का और खास करके उस लाइब्रेरी में काम कर रहे लाइब्रेरियन के पद का बहुत अधिक महत्व हो गया है। दुबे जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आजकल लाइब्रेरियन की भर्ती जो है ना वो नई तकनीक के हिसाब से की जाती है,
बिल्कुल
है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें क्या होता है बताऊं मैं आपको। लाइब्रेरियन को ई रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब स्रोत,
स्रोत है,
ई मेल जैसे होता है ना,
जी जी जी,
तो ई रिसोर्सेस का मतलब विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत से उसको जानकारी होनी चाहिए लाइब्रेरियन को। दूसरी ई बुक्स, ई बुक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कंप्यूटर में आजकल तो किताबों, तो उसका उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए लाइब्रेरियन को। और ई जर्नल्स यानी ये जो पत्र पत्रिकाएं इसकी कैटलॉगिंग को आना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन सी पत्रिका निकल रही है, विदेशों से कौन सी निकल रही है, अपने देश में कौन सी निकल रही है। तो ये सब चीजें आज के दौर में लाइब्रेरी के पद पर काम करने वाले लाइब्रेरियन को सीखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल ठीक।
तो लाइब्रेरी का अपना महत्व है,
पुस्तक
मेले का अपना महत्व है, और इन सब से बढ़ के ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और ज्ञान हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि वो इसे प्राप्त कर सकें, और अगर वो भले वो कोई भी आगे जाकर के
कुछ भी
करें, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन अगर वो शिक्षित होंगे,
ज्ञानवान होंगे,
तो उनका निश्चित रूप से।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।
पिता प्रभु येसु मेरे पावन आत्मा मीत मेरे परम पिता प्रभु येसु मेरे पावन आत्मा मीत मेरे तेरी ही पूजा तेरी ही वंदना जीवन मेरा तेरी आराधना।
साथियों अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rvahindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rvahindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rvahindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satyaswar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।